श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत में संसद में होने वाले हंगामों की। भारत की संसद में हालिया सत्र में कई दिन तक हंगामे हुए, जिसके कारण संसद की कार्यवाही नहीं चल सकी। इस पर एक नई बहस शुरू हो गई है। संसद में होने वाले हंगामों पर विभिन्न गलियारों ने अपनी गहरी चिंता जताई। मीडिया में इस पर बहस हुई। एक टीकाकार ने इस स्थिति को अपने लेख का विषय बनाया। टीकाकार का मानना है कि नोकझोंक, रोक टोक, आकस्मिक व्यवधान, व्यंग, विनोद, हाजिर जवाबी और तर्क चातुर्य ऐसी विधाएं हैं जो संसद की कार्यवाही को जीवंत बनाती हैं। ये मौलिक बहस का सृजन और साथ ही सांसदों की तत्क्षण स्फूर्त बोलने की क्षमता का निर्माण करती हैं। ये तभी संभव है जब संसद निर्धारित अवधि पर मिले, पर्याप्त बैठकें हों, वैचारिक उदारता हो और सबसे बड़ी बात यह कि सदन सुचारू रूप से चले। संविधान में व्यवस्था है कि संसद के दो सत्रों के बीच 6 महीने या इससे ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। यद्यपि संसद वर्ष में 3 बार राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है, पर विश्व की कुछ प्रमुख संसदों की तुलना में देखा जाए तो भारतीय संसद की औसत वार्षिक बैठकों और कार्यवाही का समय बहुत कम है। इंग्लैंड की प्रतिनिधि सभा औसतन वर्ष में 140 दिन, 1670 घंटे, अमेरिका में 136 दिन, 2000 घंटे, ऑस्ट्रेलिया में 64 दिन, 626 घंटे काम करती है। भारत में 64 दिन, 337 घंटे काम होता है। 16वीं लोकसभा के पहले कुछ सत्र तो सहज और निर्बाध रूप से चले, लेकिन पिछले सत्र से दोनों सदनों की बैठकें लगातार स्थगित होने लगीं। अवरोध का नवोन्मेषी तरीका, कुछ सदस्यों का सदन के मध्य में तख्तियां लेकर आ जाना एक घोर आपत्तिजनक गैर संसदीय प्रवृत्ति बन गया है। नियम के अनुसार जब सदस्य सदन के मध्य में आ जाएं तो पीठासीन अधिकारी कार्यवाही स्थगित करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। वर्तमान सत्र में जो टकराव व अवरोध के कारण मंत्रिमंडल में अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा को अध्यक्ष ने ये कहकर अस्वीकृत कर दिया कि सदन व्यवस्थित नहीं है, तो दूसरी ओर अव्यवस्था और शोर शराबे के बीच कई विधेयक और वर्ष 2018-19 का बजट बिना चर्चा के ही पारित कर दिए गए। 70 वर्ष के संसदीय इतिहास में ये पहला अवसर है जब देश का आम बजट और वित्त विधेयक बिना बहस के पारित हो गया। ऐसा ही एक इतिहास 6 महीने पहले भी रचा गया, जब संसद का शीतकालीन सत्र सरकार ने बिना किसी जायज वजह के निर्धारित समय से लगभग 1.5 महीने बाद आयोजित किया था, वो भी विपक्ष के दबाव में और केवल खाना पूर्ति के लिए सिर्फ 14 दिन का। संसदीय लोकतंत्र में संसद चले और जनहित के मुद्दों पर बहस हो, ये जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है, मगर सरकार की उससे कहीं ज़्यादा होती है। टीकाकारों का कहना है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों के सांसद अपने अपने सूबे से संबंधित मामलों पर बहस की मांग को लेकर हंगामा करते रहे और पीठासीन अधिकारी उनसे शांति बनाए रखने की औपचारिक अपील कर सदन की कार्यवाही स्थगित करते रहे। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की ओर से भी इस सिलसिले में ऐसी कोई संजीदा पहल नहीं की गई जिससे कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। दोनों सदनों में हंगामा और कार्यवाही का बार बार स्थगित होना सरकार के लिए उपयुक्त स्थिति थी। यदि ये स्थिति न बनती और संसद सुचारू रूप से चलती तो सरकार कई मोर्चों पर घिर सकती थी। सरकार को गिरती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, नित नए उजागर हो रहे बैंक घोटालों, उन घोटालों में सत्तारूढ़ दल के शीर्ष नेतृत्व से करीबी लोगों की भूमिका और उनका विदेश भागना, लड़ाकू राफेल विमानों का विवादास्पद सौदा, देश के विभिन्न भागों में जाति और सांप्रदायिक तनाव, चीनी घुसपैठ, कश्मीर के बिगड़ते हालात आदि सवालों पर विपक्ष के सवालों का सामना करना पड़ता जो कि उसके लिए आसान नहीं था। इसके अलावा SC ST एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जो हंगामा देश की सड़कों पर रहा, निश्चित रूप से ये मुद्दा भी संसद में उठता, लेकिन संसद स्थगित होने के कारण इस पर भी बहस नहीं हो सकी। इसके अलावा विपक्ष की ओर से आया अविश्वास प्रस्ताव तथा सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की चर्चा भी सरकार की मुसीबत बढ़ा सकती थी। टीकाकार ये मानते हैं कि सरकार भी नहीं चाहती थी कि संसद चले। अलबत्ता सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री और अन्य वरिष्ठ मंत्री ये ज़रूर कह रहे हैं कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और ये कि जितने दिन काम नहीं हुआ उतने दिन का वेतन नहीं दिया जाना चाहिए, बहरहाल संसद के प्रति अपनी संजीदगी प्रदर्शित करने के लिए सरकार ने अपने गठबंधन के सांसदों से ये फैसला भी करवा दिया कि वे बजट सत्र के दूसरे चरण के 23 दिनों का वेतन भत्ता नहीं लेंगे। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार,
प्रमुख विपक्ष के नाते दोनों सदनों में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा पंचायत में जनहित के कामकाज करने के बजाय, विदाई कामकाज करने के बजाय और देश का कई गंभीर मामलों के बारे में चर्चा करने के बजाय हाउस को रोक के रखने का काम किया है। उनके साथ कई विपक्ष भी साथ दिए हैं। ये सारे विषयों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी सांसदों ने तय किया है, यानी ये 23 दिन का वेतन और भत्ता हम नहीं लेंगे।
मगर वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ सरकार की इस बात और उसके इस तर्क से सहमत नहीं है और संसद के न चलने के संबंध में सरकार को अधिक दोषी मानते हैं।
बहरहाल यहाँ गलती कर रहे हैं प्रधान सेवक। कांग्रेस को और विपक्षी पार्टियों को ब्लेम देने के बजाय, दोष देने के बजाय सीधा पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोष दे दो, खत्म हो गई बात। 5 नो कॉन्फिडेंस मोशन हैं इस वक्त लोकसभा में जिन पर चर्चा ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि श्रीमती सुमित्रा महाजन हमेशा संसद को स्थगित करती रही ये कहकर कि संसद में ऑर्डर नहीं है, मौन नहीं है, हंगामा हो रहा है। जितेंद्र सिंह हैं, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, उनका कहना है एंटायर सेशन गॉट वॉश्ड आउट। अरे भैया, ये तो शिकायत हमारी आपसे है कि सारा सेशन ही आप लोगों ने नहीं चलने दिया। क्यों? ताकि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उस पर चर्चा ना हो, जो जो चर्चा में आएगा वो संसद के रिकॉर्ड्स में जाएगा, हमेशा के लिए जाएगा। इसलिए आपकी शुरू से स्ट्रैटेजी ही यही थी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो ही ना। अब आप जिसको मर्जी दोष देते रहिए, जितनी मर्जी भूख हड़ताल करते रहिए, अब वो पुराने साल बीत गए हैं, 3-4 साल जब लोग झांसे में आ जाते थे, बातों में आ जाते थे, सबको मालूम है कि संसद क्यों नहीं चली है।
भाजपा के वरिष्ठ सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल इस बात पर जोर देते हैं कि सांसदों का वेतन और भत्ता कटना चाहिए।
यह फैसला वास्तव में नजीर के रूप में साबित होगा, एक इतिहास कायम करेगा। और हम जब आम लोगों के लिए कहते हैं, चाहे वो फैक्ट्री में काम करते हो, सर्विस में काम करते हो, अन्य जगहों पर, तो उन्हें कहते हैं कि नो वर्क नो पे, हम काम नहीं करेंगे तो हम वेतन नहीं लेंगे। तो हम तो वास्तव में यहाँ जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता हमें चुन करके भेजती है कि हम उनके समस्याओं को वाहवारी की, उनके समस्याओं के निदान के लिए हम सदन में उनके बात को उठाएं। लेकिन जब सदन नहीं चले, सदन नहीं चलने दिया जाए, और तब हमको वेतन लेने का कोई हक भी नहीं है। पहली बार यह बजट सत्र के हंगामा, ये पहली बार है। और उस समय हम चूंकि सत्ता में नहीं थे, उस समय सत्ता में जो लोग थे उनको यह निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन उस समय उनको निर्णय लेने का वक्त भी नहीं था और निर्णय लेना चाहते भी नहीं। मैं तो वास्तव में कहता हूं कि आप काम नहीं होने दे रहे हो, आप काम नहीं हो रहा है सदन में, तो फिर वेतन क्यों ले रहे हो, हाजिरी क्यों बना रहे हो? हाजिरी बना भी रहे तो उसको तो कम से कम वेतन नहीं लेना चाहिए। जनता का पैसा है, यह जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा है जो जनता के प्रतिनिधि को वेतन और भत्ते के रूप में दिए जाते हैं।
वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद प्रदीप टम्टा अपना पक्ष अलग अंदाज में रखते हैं और यही बात दोहराते हैं कि सरकार ने खुद नहीं चाहा कि संसद चल सके।
सर, हम तो सदन के अंदर आ रहे हैं, इस पूरे सदन को चलने किसने दिए? लोकसभा की, राज्यसभा में? हमने राज्यसभा में कहा, इस देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला हुआ 20,000 करोड़ से ऊपर का, इन्हीं की लोकसभा में तेलुगु देशम पार्टी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई। कांग्रेस ने, तमाम विपक्षी दलों ने उस अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन दिया, उस पर चर्चा क्यों नहीं? कौन लोग वेल में थे? राज्यसभा के अंदर करप्शन के बिल पर जब प्रतिपक्ष ने डिवीजन की मांग की, डिवीजन को किसने नहीं होने दिया? कौन लोग सदन में के अंदर बैठे हुए थे?
वेतन और भत्ता कटने के सवाल पर कुछ टीकाकारों का कहना है कि संसद में हंगामा तो पिछले 4 साल के दौरान हर सत्र में हुआ और कई कई दिन काम नहीं हो पाया, फिर ये फैसला इस बार ही क्यों? इसकी वजह साफ है, संसद नहीं चलने देने का ठीकरा विपक्ष के माथे पर फोड़ने की कोशिश के तहत सरकार ये कदम उठा रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के सांसद डी राजा कहते हैं कि सत्ताधारी पार्टी की हट धर्मिता की वजह से संसद नहीं चल सकी और इसी से उपजे अपराध बोध के चलते उसने गठबंधन के सांसदों से कहा है कि वो वेतन भत्ता न लें। संसद के न चलने के जो भी कारण हो, लेकिन ये तो साफ है कि इससे जनता और देश का नुकसान हुआ है। अतः इस स्थिति को हथकंडे के रूप में प्रयोग करना किसी तरह भी उचित नहीं है।